सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत कुछ वर्षों के बाद आज फिर से बिलासपुर आने का मौका मिला है, जहां आप सभी के इस विशाल सत्संग के रूम में दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जहां पर आप सभी मिल बैठकर ऐसे यथार्थ वचन श्रवण कर रहे हैं, जो सत्य, भक्ति, प्रेम, मानवता के ऊपर आधारित हैं, जिन वचनों को सुनकर हम आनंद ले रहे थे, चाहे वो छोटे बच्चों की रसना से निकले हों, चाहे वो किसी जवान की जुबान से वो शब्द सुनने को मिले हों, या फिर प्रांत देश की सेवा में तो तल्लीन है उन सज्जनों से भी आपने उत्तम भाव श्रवण किए, जो प्रेम भाईचारे के ऊपर आधारित हैं, जिसकी आज जरूरत है संसार भर को। जगह जगह पर ऐसे ही भाव लिए हुए भक्तजन विचरण करते हैं, और वही होते हैं जो देश संसार के लिए वरदान होते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत हो, जगह जगह पर जाने के मौके मिलते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में दो बरस पहले चंद स्थानों पर जाने के मौके मिले थे, या फिर लगातार गाए बगाए यहां पर समागमों के भी प्रांतीय आयोजन होते हैं। इसी तरह से चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात, राजस्थान की, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार की, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, जहां पर अक्सर जाने के मौके मिलते हैं, चाहे वो आसाम, दार्जिलिंग, शिलांग हो, या सिक्किम, गैंगटॉक हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी भाषा हो, बंगाल की भाषा, उड़िया भाषा, असमिया भाषा, या फिर पंजाबी, सिंधी, हिंदी, गुजराती, या पहाड़ी भाषा, कहीं उत्तराखंड में जहां परसों ही दास मसूरी से सीधा सोलन जहां पहुंचना हुआ, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है, तो वहां उत्तराखंड में भी लगातार समागम और सत्संग करने के जगह जगह पर मौके मिलते हैं। यानी कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत की बात कर लें, या फिर इसी बरस जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जाने का मौका मिला, या फिर अभी जून, जुलाई, अगस्त में यूरोप, अमेरिका और कनाडा के अनेकों स्थानों में दो महीने वहां जाकर जहां संतों के दर्शन करने का मौका मिला, वहां पर यही सत्य का पैगाम उन मुल्कों में भी इसी रूप में पहुंचाया जा रहा है। मानवीय मूल्य, जिसको ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, इसके लिए सबको प्रेरित किया जा रहा था। साथ ही साथ ये जो बटा हुआ है संसार, जाति, मजहब, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, जो रंग नस्ल के ऊपर आधार, जो भाषाओं के ऊपर पे आधारित, किस तरह से जहां हमारा देश भी बटा हुआ है वहां विश्व भी बटा हुआ है। इसीलिए जब कनाडा कैलगरी में दो दिनों का यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन वहां हुआ, वहां पर दो और तीन जुलाई को यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन, और उसका जो थीम रखा गया था वो था द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, कि ये दुनिया दीवारों के बगैर उसकी चाहत है। वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जब वसुदेव कुटुम्बकम की बात कही थी, उसके मायने यही थे कि हम एक ही परिवार का अंग है, वसुदेव कुटुम्बकम, कि इस वसुधा पे, इस धरती पे बसने वाले तमाम लोग एक ही कुटुंब, एक ही परिवार का अंग है, वो है मानव परिवार। तो वहां पर भी इसी बात के ऊपर नौजवान जोर दे रहे थे कि वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, बिल्डिंग ब्रिजेस पीस बाय पीस। ये उन मुल्कों में बसने वाले नौजवानों की बात, यानी कि जिस नौजवानी की उम्र से भय लगता है, जिस नौजवानी की उम्र में क्या क्या समाज में कुरीतियां आती चली जा रही हैं, जहां पर बहनें माताएं जो है महफूज नहीं अपने आप को पाती, चाहे वो महानगर हो चाहे कोई इलाका हो, किस तरह से नौजवान खिलवाड़ करते हैं इज्जत के साथ। वहां पर मिशन के नौजवान इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमने इस धरती को दीवारों के बगैर रूप देना है, वरना वो भी नौजवान है जो इतने हानिकारक हथियार लेकर जाने लिए चले जा रहे हैं, मातम फैला रहे हैं, मजहब का नारा लेकर जहां पर जन्नत नसीब होगी मासूमों की जाने लेकर, इस तरह की मान्यताओं से जो युक्त हैं, जहां पर मनों में जहर भरे हुए हैं, वो भी नौजवानी की उम्र है। लेकिन वो नौजवानी की उम्र अभिशाप है इस धरती के लिए। इसीलिए पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि नहीं तो धरती बांज रहे काहे गवावे नूर, कि जननी जन्मे तो संत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांज रहे काहे गवावे नूर। तो इस तरह से एक वो भी है जो नौजवानी की उम्र में एक दूसरों के लिए नुकसान का कारण बन रहे हैं, उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इधर सदुपयोग हो रहा है जो ये शक्ति मालिक दातार ने प्रदान की है। इसीलिए मुल्क कोई भी हो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सभी जगह के ऊपर किस तरह से ये नौजवान योगदान दे रहे हैं, जहां पर भाईचारे की भावना को मजबूत कर रहे हैं, वहां पर एक वातावरण को सुंदर बनाने के लिए भी इस मुल्क में क्या, उस मुल्क में क्या या अन्य मुल्कों में क्या, इसी तरह से योगदान दिए जा रहे हैं। जहां पर अभी आपने सुना ही होगा कि अभी दो रविवार पहले दिल्ली में भी 1,00,000 वृक्षारोपण जो अभियान चला, मिशन के हजारों महापुरुषों ने वहां दिल्ली में ही, क्योंकि महानगर में पोल्यूशन कहीं अधिक होती है, इसलिए वहां पर और ज्यादा जरूरत वृक्षों की। तो जहां दिल्ली में दो इतवार पहले 1,00,000 वृक्ष लगाए गए, वहां पर नौजवान संगत वहां पर उपस्थित थी, और कड़कती धूप में, झुलसती गर्मी में भी इस तरह से उन्होंने इस कार्य को सरंजाम दिया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ये मिलकर। इसी तरह से पिछले ही रविवार को मुंबई महानगर में 1,00,000 वृक्ष लगाए गए, जहां पर हजारों महापुरुष, साध संगत, नौजवान, जो चैरिटेबल फाउंडेशन, जो मिशन के द्वारा ऐसे सामाजिक कार्य कर रही है। तो इस तरह से उन मुल्कों में भी, चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, वहां पर भी जैसे वृक्षारोपण हो रहे हैं, कहीं रक्तदान शिविर लग रहे हैं, कहीं पर एक साफ सफाई के अभियान, स्वच्छता अभियान, जिसको हम देश में काफी प्रचलित ये शब्द हुआ है, जिसमें मिशन अरसे से कार्य कर रहा है। और अभी ही चंद दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के सामने एम्बेसडर्स ऑफ जो स्वच्छता अभियान जो चला है, उसमें 120 एम्बेसडर्स को चुना गया, जिसमें मिशन को भी चुना गया। और वहां पर भी जो मिशन योगदान दे रहा है, उसके चर्चे लगातार चल रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है, जो भी आपने श्रवण किया कि एक प्रदूषण बाहर का है, एक प्रदूषण अंतर का है, एक अंतर जो हमारे प्रदूषित मन है हमारे, जहां पर विषैलापन है, जहां पर असहनशीलता है, जहां पर एक क्रूरता है, कठोरता है, जिसके कारण इंसान इंसान भी नहीं रहता है, रूप इंसान, जिस्मानी रूप में इंसान क्या पहचान तो वो रहता है, लेकिन दरअसल फितरत करके वो इंसान नजर नहीं आता है, वो कुछ और ही रूप हो जाता है। इसीलिए इसी मानवीय जन्म को पाने वाले को हम हैवान, शैतान, दानव कह देते हैं, मानव भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उसकी फितरत ऐसी होती है, उसकी भावना ऐसी होती है, उसके मन का विशैलापन, उसके मन में फैले हुई घृणा, नफरत, ईर्ष्या की अग्नि जिसमें जलता है, जलाता है, खुद भी झुलसता है औरों को भी झुलसाता है, उसमें बच्चों, मासूम बच्चों का भी लिहाज नहीं करता है। तो इस तरह से ये एक वैर, ईर्ष्या, घृणा की आग ये जल रही है इस मन में, ये प्रदूषित हुआ है ये मन। तो इस तरह से अंतर बाहर स्वच्छता, एक बाहर भी सुंदर वातावरण हो जहां सुख की, राहत की सांस हो, जहां पर वायुमंडल स्वच्छ हो, जहां पर ऐसी आबोहवा ना हो कि हमारे शरीर भी रोगी होते चले जाएं। तो जैसे दास अक्सर कहता है कि तन रोगी हो वो भी हमें बेचैन करता है, हमें, हमारे लिए नुकसान का कारण बनता है। इसलिए अक्सर हम एक तंदुरुस्ती की बात करते हैं कि ये तन दुरुस्त रहे, ये तन ठीक रहे। जो जहां पर तन दुरुस्ती जरूरी है कि तन भी दुरुस्त रहे, वहां पर मन दुरुस्ती भी जरूरी है कि ये मन भी हमारा दुरुस्त रहे, क्योंकि मन ही रावण हो जाता है, मन ही राम हो जाता है। जैसे दास अक्सर कहता है, गाड़ी में स्टेयरिंग तो एक ही होता है, उसी स्टेयरिंग का इस्तेमाल करके हम मंजिल मकसूद को पा सकते हैं, और उसी स्टेयरिंग के कारण हम उसी गाड़ी को खाई में गिरा सकते हैं। अक्सर होता है, आप देखते हैं कि गाड़ी खाई में गिर गई है, कोई दुर्घटना हो गई है। अब स्टेयरिंग तो वही है, लेकिन उस स्टेयरिंग का सही ढंग से, जागरूकता से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसी तरह से मन ही रावण, मन ही राम, मन में ही शुद्ध भावनाएं और मन में ही दुर्भावनाएं, मन में ही विनम्रता और मन में ही अहम और अभिमान, जिस रोग से आज इंसान इतना पीड़ित हो चुका है, अहम अभिमान, मैं, मेरा, मैं ही करता चला जाता है, मैं दौलतमंद, मैं ताकत वाला, मैं इल्म वाला, मैं ही करता चला जाता है, इतना अभिमान में चूर है, अभिमानी हुआ पड़ा है, मेरी जाति ऊंची, तेरी जाति नीची, जहां से मैं जल लेता हूं तू वहां से जल नहीं ले सकता है, वरना तेरी जान ले लूंगा। और दूसरी तरफ पढ़ भी रहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है, ये अवतार वाणी में हम पढ़ते हैं, जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की रचित वाणी। और बाबा अवतार सिंह जी आज ही 17 सितंबर को उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्यागा था, वो भी यही कह रहे हैं कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन की खलकत सारी है। कबीर जी भी यही कहते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूरे ओ सर्व ठाई। तो बात हो रही थी अभिमान की, कि जाति का गर्व अभिमान, कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा, चाहे वो जाति का अभिमान हो, चाहे मजहब का, कि मेरा मजहब ऊंचा है, तेरा मजहब नीचा है, मेरा पैगंबर ऊंचा है, तेरा पैगंबर नीचा है, इस तरह से इस अभिमान में भी चूर है। अगर इल्म की बात कर लें, चार अक्षर क्या पढ़ लिए, अपने आप को इतना ऊंचा और दूसरे को मूर्ख मानने लग पड़ते हैं कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूं, ये तो एक अनपढ़ है, इसी तरह से मेरे पास ताकत है, मैं इसको क्या समझता हूं। ऐसे ऐसे अहम अभिमान में चूर इंसान, तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि ये भी रोग है। तो मन में ही अभिमान जागता है और मन ही विनम्र बन जाता है। संतों महात्माओं के जीवन को हम देखते हैं कि कितनी विनम्रता, उनके पास भी यही मन है, लेकिन मन में विनम्रता है, दास भावना है, आपस को जो जाने नीचा सही गनिए सब ते ऊंचा, वो अपने आप को निमाना मानते हैं, विनम्रता है, अकर्ता भाव है। कर्ता भाव आ गया तो अभिमान जाग गया, वहां पर अकर्ता भाव है कि ना हम किया ना करेंगे, ना किच किया शरीर, जो किच किया हरि किया, भयो कबीर कबीर। उनकी ये भावना होती है कि देन हार को और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। जैसे रहीम जी को जब सामने से गुजर रहे थे लोग, खैरात बांटी जा रही थी, और उनमें से किसी ने कहा कि ये रहीम जी नीचे निगाह कर के खड़े हैं और हमारे कासे में कुछ डाल रहे हैं, तो इनको अभिमान इतना हो गया है कि हमसे नजर भी नहीं मिला रहे। ये जैसे ये समझ रहे हैं कि ये तो नीचे हैं, जो मेरे सामने से कटोरा लेके चल रहे हैं ये तो नीचे हैं, इनकी तरफ क्या देखना है। तो किसी ने ये कमेंट पास कर दिया कि रहीम को अभिमान हो गया है। लेकिन ये बात सुनी जब रहीम ने, तो रहीम क्या कहते हैं कि देन हार को और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। कि लोग भरम मुझ पे कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरी निगाहें नीचे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं देन हार को और है, देता है दिन रैन, जो दिन रात देता है, जान को देत अजान को देत है, जो सबको दे रहा है, सारी दुनिया को पालन करने वाला है, जो कीड़ी से चींटी से हाथी तक की पालना करता है, जो पत्थर में भी कीड़ों की पालना कर रहा है। तो देन हार को और है, देता है दिन रैन, यही है जो दिए चले जा रहा है, इसी की बदौलत ये सौगाते हैं, यही देने वाला है। दद्दा दाता एक है, ये एक ही है जो दे रहा है। तो वहां पर कबीर रहीम जी में विनम्रता है, हालांकि दे भी रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देने का अभिमान नहीं है। वहां पर इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, ये भावना है। जैसे हनुमान जी की भावना है, हनुमान जी कहां पर उड़कर जाते हैं, कहां पर लंका में जाते हैं, और जो जो उनके योगदान है वो सब हम रोज पढ़ते सुनते सुनाते हैं, वो लीलाएं देखी दिखाई जाती हैं। लेकिन हनुमान जी की अवस्था कि मेरा जितना यश कर लो, लेकिन कृपा तो राम जी की है, शक्ति तो राम जी की है। तो ये है विनम्रता। तो इस तरह से ये मन ही जहां पर राक्षस बन जाता है, यही मन देवता हो जाता है, यही मन कड़वाहट से भरपूर, यही मन मिठास से भर जाता है। और मन की ही मिठास या कड़वाहट है जो जुबान पे भी आ जाती है, वरना जुबान कड़वी या मीठी क्या, ये तो मांस का टुकड़ा है, इसका क्या मीठापन, इसका क्या कड़वापन, ये तो मांस का टुकड़ा है जो हमारे मुख में है। तो अगर जुबान कड़वी या जुबान मीठी, उसके पीछे फिर मन की ही कारस्तानी है। अगर मन मीठा हो गया तो जुबान भी मीठी, अगर मन कड़वा है तो जुबान भी कड़वी, और ऐसी कड़वी के जख्म दे देती है, इतना जख्म दे देती है, छलनी कर देती है। एक बेगानों की बात तो छोड़ो, एक ही घर में, एक ही छत में, एक ही परिवार का अंग, उसी में ही एक की वाणी इतनी कड़वी हो जाए, सारा घर नरक महसूस होता है कि कड़वे बोल, हमेशा ही एक दिल दुखाने वाली बातें। इस तरह से एक ताने मेने ऐसी जुबान, तो मिठास जुबान की वहां पर जहां पर मन भी मीठा है। तो मन मीठा है तो जुबान भी मीठी, वाणी भी मीठी, तो इसीलिए मिठास भरे शब्दों का उच्चारण, और उसी के कारण दूसरों के मन को मोह लेना। जैसे कोयल की वाणी वो मन मोह लेती है, और कौवा भी उसी काले रंग का है, लेकिन उसकी काएं काएं, उसका कड़वापन वो नहीं मोता है, उसको हम भगाते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं अपने चुबारों से कि उड़ जाए, ये तो कानी खा गया है। तो इसीलिए महापुरुषों के कथन कि कागा काको धर हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत, कि कौवे की वाणी वो उसको उस कौवे ने हमारे कोई दौलत नहीं चुराई है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, कौवे ने हमारा कुछ चुराया नहीं है और कोयल ने कोई हीरो का हार अपनी चोंच में उठाकर हमारे घर में आकर फेंक नहीं दिया है। तो कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, दोनों में अंतर इतना ही है केवल कि मीठे शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले, कि कोयल इसलिए भाई क्योंकि उसने मिठास का इस्तेमाल किया, मीठी वाणी का इस्तेमाल किया। तो मन में ही मिठास, मन में ही कड़वाहट, इसी तरह से जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही मन है जो निर्मल हो जाता है। और यही मन, जिस विषैलेपन की बात हो रही है, प्रदूषण की बात हो रही है, कि जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि एक मन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर, कि एक मन निर्मल हो जाता है और एक मन में गंदगी होती है, एक गंदी एक सोच विषैली सोच होती है, दुष्भावनाएं इस मन में जन्म लेती हैं और उसी के कारण दुर्व्यवहार करते हैं, सदव्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि दुष्भावनाएं हैं, सद्भावनाएं नहीं है। तो इसलिए ये मन की भावनाएं, मन की अवस्था ये कैसी है, इसीलिए महापुरुष प्रेरित करते हैं कि इस मन में बसा लें इस निर्मल परम सत्ता को, इस मन का नाता जोड़ लें सरी परमात्मा निराकार के साथ। इसके साथ ये मन जुड़ा रहेगा तो ये हमेशा ही सुंदर भावनाओं से युक्त रहेगा, इसकी चाहत ये हमेशा अच्छाई और सच्चाई की बनी रहेगी, ये नेकी की तरफ इस मन का रुझान रहेगा, ये दूसरे के ऊपर कुर्बान जाने की भावना रखेगा, ये तप त्याग निष्काम सेवा करेगा, ना कि दूसरे का हक छीनने वाली भावना इसमें पैदा होगी कि मालूम होते हुए भी ये मेरा हक नहीं है फिर भी छीनेगा, चाहे वो सका पिता एक सका भाई क्यों ना हो, अपना बाप ही क्यों ना हो, फिर भी छीनने की प्रवृत्ति रहेगी। और दूसरी तरफ इसी मन में त्याग की भावना कि है भले मेरा ही सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के काम आऊं, क्या हो गया मेरा भाई तो है, क्या हो गया मेरा पिता है जिसने मुझे जन्म दिया, पाला है, पोसा है, मुझे पढ़ाया लिखाया, है तो मेरा पिता, वहां पर वो भी एक भाव है, दोनों भावनाओं में कितना अंतर है। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन जो पैगाम जो संदेश देते हैं वो इसी भाव से देते हैं, ताकि इंसान की सोच ऊंची बने, इंसान की मनोवस्था ऊंची बने, इंसान प्रधानता दे तो इस सत्य को दे, इस मालिक खालिक को दे, इस निराकार को दे, जो कि सोते जागते संसार को दे रहा है, हमेशा ही संसार को विशेषता देता है। और ये जितनी भी विपरीत भावनाओं का जिक्र हुआ है, अवस्था का जिक्र हुआ है, ये सब संसार के ऊपर आधारित है। निराकार के ऊपर आधारित तो वो है अवस्था और भावना जो कि कल्याणकारी है, बाकी सब संसार, संसार की माया, संसार की झूठी शान और शौकत, संसार के प्रति लालसाएं, तृष्णाएं, इसके ऊपर आधारित ये सब हमारे लिए नुकसान का कारण। इसीलिए महापुरुष संत जन ये प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इंसान इस सच को विशेषता दे, ये जान जाए कि यही है जो लोक और परलोक जिसके कारण सुखी और सुहेला होने वाला है, यही है जो कायम दायम रहने वाला है, ये जिस्म मिट जाएंगे आज नहीं तो कल संसार से कूच कर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कि ये तो पानी का बुदबुदा है, जैसे वो एक शायर लोगों ने भी इस भाव को प्रकट किया कि एक कतरा भी जहां आज उभरता है समुद्र के ही लहजे में बात करता है कि होता तो कतरा है लेकिन इतना अभिमान के अपने आप को सागर और समुद्र मान बैठता है कि एक कतरा भी जहां कहीं उभरता है समुद्र के ही लहजे में बात करता है। तो इसी तरह से यहां पर बात इस विनम्रता की हो रही है, विशालता की हो रही है, प्रेम की हो रही है, करुणा की हो रही है, दया भावना की हो रही है। इन भावनाओं से युक्त होकर तप त्याग की भावना, दूसरे के काम आने की भावना, जैसे वृक्ष पेड़ सारा दिन धूप में खड़ा रहता है लेकिन औरों को छाया देता है, इसी तरह से संत महात्मा भक्तजन, ये आप पता नहीं कितने कितने कष्टों में से गुजरते हैं लेकिन दूसरे को छाया देते हैं। ये है मनोवस्था, उत्तम अवस्था, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, कि अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन वो जीना जीना होता है जो औरों के लिए जीता है, जो औरों के काम आता है, औरों को छाया देता है, औरों को सुकून देता है। उस वृक्ष की तरह चाहे आप खुद खड़कती धूप में खड़ा रहे, तो इसी तरह से ये तमाम एक ऐसे पहलू दर्शाए जा रहे हैं, अंधेरे और सवेरे की तरह एक अंधकार में पहलू हैं, एक उजाले वाले पहलू हैं। तो इंसानों के लिए ये पैगाम, ये संदेश इंसानों के लिए ही प्रार्थनाएं कि दातार सुमति दे कि ये ठीक ही चुने। कल भी दास यही भाव सोलन में रख रहा था कि ये ठीक चुने, और ठीक चयन तभी होता है अगर ऐसी संतों महात्माओं की संगत सोबत मिलती है। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, ये कथन हम पढ़ते सुनते हैं। तो अगर विवेक प्राप्त हो गया तो फिर तो ठीक ही चुनेंगे, ठीक चुनेंगे, ठीक रास्ता चुनेंगे, ठीक भावनाओं को हृदय में बसाएंगे और उसी अनुसार सही व्यवहार करेंगे। इसलिए ये सुमति भी मांगी जा रही है कि दातार कृपा करो सबको सुमति मिले, सबको जागरूकता मिले, सभी को जागृति मिले, ताकि सभी एक सुंदर चाल चल पाए इस जीवन की जो रोज मिलता नहीं है, जो दुर्लभ है। ये मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ये उत्तम और बहुत ही अमोलक जन्म, दुर्लभ जन्म मिला है, ये बार बार हाथ नहीं आता है। एक बार कोई इस धरती से चला गया, हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, फिर आंखें तरसती रहती हैं उसको देखने के लिए, वो नहीं नजर आता है। अगर वो नजर नहीं आता है तो हम भी एक समय आएगा हम भी नजर नहीं आएंगे। यहां तो ये नजारे भी नहीं रहते, और जिन आंखों के द्वारा नजारे लिए जाते हैं वो आंखें भी नहीं रहती हैं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जन्म अमोलक जो मालिक ने बख्शा है, इस जन्म की कदर करें, इसको हम पशुओं जानवरों की तरह ना गंवाएं, वैर वास्तव में रहकर ना गंवाएं। इसकी कीमत ये नहीं है जो घृणा वैर नफरत करते चले जा रहे हैं, लूटमार करते चले जा रहे हैं, हिंसा करते चले जा रहे हैं, ये जीवन की हमारी ये कीमत नहीं है, ये कदर जीवन की कदर नहीं है, ये बेकदरापन है, बेकदर हैं हम। जो अमोलक सांस मालिक ने बख्शे हैं हमें ये कदर नहीं है, ये कितने कीमती हैं। कि मार्ग मोती बिखरे अंधा निकसे हो जाए, ज्योत बिना जगदीश के जगत उलंघे जाए, कि जैसे अंधापन होता है मार्ग में मोती बिखरे पड़े होते हैं लेकिन उसी अंधेपन के कारण उन कीमती मोतियों को उठाकर मालामाल होने की बजाय उन्हीं कीमती मोतियों में से ऐसे गुजर जाता है और कंकर की तरह पांव के नीचे रौंद देता है, क्योंकि वहां अंधापन है। अंधापन है इसलिए मोतियों की कीमत ना जानी, उसकी कीमत कंकर डाली। इसीलिए कहते हैं कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा, कि कौड़ियों के भाव इस समोलक जन्म को गंवा देते हैं। तो कदरा एक कदर करें, कदर करें ये श्वास जो मालिक ने बख्शे हैं, ये कभी भी ये श्वासों की लड़ी टूट सकती है। अभी हंस रहा था अभी मर गया, जीस्त और मौत का फासला तो देखिए कि एक पल की बात है, एक रति भर एक छोटा सा कणका लगता है तो फिर ये हमारा सिलसिला समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इस श्वासों की कदर करें, इस जीवन की कदर करें और इस जीवन को जिएं प्यार के साथ, प्यार ही देते चले जाएं, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्यार ही प्यार बांटते चले जाओ। अभी भी आप रचना मिलजुल कर पढ़ रहे थे कि प्यार ही प्यार, प्यार से ही धरती सजेगी समरेगी, नफरत वीरानगी लाई है पहले भी और अगर नफरत ही होती जाएगी तो वीरानगी ही आएगी। प्यार का सजना सवरना आबाद रहना एक धरती का वो प्यार के कारण ही है। तो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव दाई नेबर, प्यार की ही बातें हैं, प्यार के ही तराने ये संतों महात्माओं ने गाए हैं। जरूरत है कि हम भी प्यार करना सीख जाएं, हमें भी जीवन जीने का सलीका आ जाए और सही सलीका जीवन जीने का वो प्यार के कारण है, एक सुंदर भावनाओं के कारण है। ये जीवन जीने का सलीका जिसने भी जान लिया वही देवता हो गया, वही देवता हो गया बल्कि वही प्रभु का रूप हो गया। जैसे कबीर जी ने कहा है कि हर ही जैसा होए, कि हरिजन ऐसा चाहिए हर ही जैसा होए, हरि के जैसा हो जाता है जिसकी ऐसी उत्तम भावनाएं हो जाती हैं, जिसकी ऐसी उत्तम चाल हो जाती है। तो अवसाद संगत यही अरदास यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, सबको सुमति दे, चाहे पहाड़ों में रहने वाले हैं, चाहे रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले हैं, किसी दिशा में उनका वासा है, किसी संस्कृति में जन्मे पले हैं, ये मूल्य जो मूलतः जिनकी जरूरत है, जो संतों महात्माओं की थी और जिसके बारे में उन्होंने प्रेरणाएं दी, ये हर इंसान ऐसे मूल्यों से युक्त हो, ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त हो ताकि धरती ये जन्नत बन जाए, हमारे मकान सही मायनों में घर बन जाए और चाहे फिर कुटिया में क्यों ना रहें, उनका दर्जा महलों से भी ऊंचा हो जाए। अगर इस तरह की अवस्थाएं बन जाएं, इस तरह की भावनाएं बन जाएं, इस तरह के नजरिए बन जाएं, इस तरह से हमारा संसार में विचरण हो जाए, तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा और फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहां बिलासपुर में आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई है, जो हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में ये एक लड़ी में ये भी एक स्थान चुना गया और बहुत ही खुशी हुई। यहां पर देर रात को पहुंचना हुआ और अभी फिर आगे की रवानगी है, तो जहां जहां पर भी जाने के मौके मिल रहे हैं, ऐसी प्रेम ऐसी श्रद्धा ऐसी भक्ति भावना ऐसी लगन ये देखने को मिल रही है, तो इसी तरह से ये लगन बनी रहे और साथ ही साथ तन मन धन के सुख भी दातार सभी को प्रदान करे, यही प्रार्थना यही अरदास है। सत्संग जी धन्यवाद।